حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین، انہ خیر ناصر المعین، غافر الذنب، قابل التوب، انہ تواب الرحیم۔ ثم الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيه الله في الارضين۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي۔ افوض امری الی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقوله الحق وهو اصدق القائلین، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ سورہ مبارکہ آل عمران 176-176 آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ اس آیت سے ہم نے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن جو ہماری روش رہی ہے، ہمارا طریقہ کار رہا ہے علماء کی پیروی میں، کہ ماہ محرم و سفر میں ہر مجلس کے آغاز میں پہلے اپنے مولا کو مل کر سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے مل کر، میرے ساتھ مل کے مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ السلام علیکم یا رب اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی سلام اللہ عبدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر لحد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم۔ برادران عزیز، بارہا اور اس عشرہ محرم میں بھی آپ کی خدمت میں جو لوگ بہرحال موجود تھے، عرض کیا کہ خود مومنین کا امام حسین علیہ السلام سے جو رابطہ ہے، یہ خاص رابطہ ہے۔ کلہم نور واحد، سب کے سب اہل بیت ایک ہی نور کا حصہ ہیں، ایک ہی حقیقت ہیں، ایک ہی حقیقت کی مختلف تجلیاں ہیں، لیکن بہرحال اس کے باوجود جو خود امام حسین سے ایک رابطہ ہے، اس کے اندر ایک خاص رنگ پایا جاتا ہے، ایک خاص شوق اور خاص حرارت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے باقی ائمہ معصومین علیہ السلام بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو امام حسین کی طرف متوجہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو سلام ہم نے مولا کی خدمت میں پیش کیا۔ سدیر سیرفی چھٹے امام کے صحابی ہیں۔ مولا ایک دفعہ سوال کرتے ہیں سدیر سے کہ سدیر، یہ بتاؤ کہ کیا تم ہر دن ہمارے جد کی زیارت کرتے ہو؟ ہر دن امام حسین کی، ہمارے جد حسین کی زیارت کرتے ہو؟ سدیر نے کہا کہ نہیں مولا، میں ہر دن تو زیارت نہیں کر پاتا۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو سدیر، جب ہر دن کوشش یہ کیا کرو کہ زیارت کرو، اور اگر طویل زیارت نہیں کر سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، تو کم از کم اتنا ضرور کیا کرو کہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہا کرو السلام علیکم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم سے توقع ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اہل بیت کو نہ بھلائیں۔
इसीलिए देखें आप कितनी चीजें हैं, हर कोई खुदा का यौमुल्लाह यानी कोई भी अय्यामुल्लाह में से वो दिन के जो मजहबी हवाले से किसी खास अहमियत का हामिल है, उधर इमाम हुसैन की ज्यारत जो है वो मुस्तहब है, इमाम हुसैन की खास ज्यारत उस दिन के लिए है। ईद के दिन, दोनों जो ईद के दिन है, ईद शव्वाल ईद उल अज़हा, इमाम हुसैन की ज्यारत है। रजब के महीने में इमाम हुसैन की ज्यारत है। शब यानी 15 शाबान के जो इमाम वक्त से मंसूब है कि वह सलवात पढ़े इमाम के साथ पे, इमाम की ज्यारत, यानी हर जो दिन जो अहम है, रोजे आराफा। देखिए बास रिवायतें ऐसी हैं कि वाकया उसे हजम करना, उसे समझना संगीन है। ये रिवायत के अल्फाज हैं कि रोजे आराफा खुदा पहले इमाम हुसैन की कब्र और वहां पर आने वालों की तरफ नजर करता है, उसके बाद मीना में खुदा नजर करता है। अब बहरहाल इसके असरार है, इसका मतलब ये नहीं है कि हज वाजिब, बास लोग जब इस तरीके से करते हैं कि ये बहरहाल ये हकीकत है, ये किस्सा नहीं है कि वह हज के लिए जा रहा था काफिला, जिस जमाने में किश्तियों पे जाया जाता था, उन्हें पता चला कि भाई करबला का सवाब जो है वो इतने हज का सवाब है, तो उन्होंने अपनी किश्ती को मोड़ दिया। पर उन्होंने बाद में बताया कि नहीं भाई ये जो है वो वाजिब है, इसको अदा करना ज़रूरी है हज। इसका मतलब ये नहीं है कि हज छोड़ दिया जाए, यह हज वाजिब नहीं है, लेकिन ये असरार है जिसे समझने की ज़रूरत है। यानी मोमिनीन का जो राबता इमाम हुसैन से है, ताकि हर दिन जब पानी पियो, समय मुझसे कहा जा रहा है कि अगर आपको जहमत ना हो तो सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएं और नज़दीक होकर बैठ जाएं, ताकि बाहर जो लोग हैं उन्हें भी अंदर आके बैठने का मौका मिल सके, सलवात पढ़ दें बाबा से बुलंद मोहम्मद। इसका मतलब ये है कि खुदा ये चाहता है कि किसी भी सूरत में इमाम हुसैन को फरामोश न किया जाए, जब पानी पियो तो इमाम को याद करो। यानी हर जगह कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि जो इमाम की याद से खाली रह जाए, और उसके जो राज है यानी जो उसके अंदर असल जो उसकी हकीकत है वो ये है कि वही बात के जिसकी तरफ से इमाम ने, जिस तरफ इमाम ने इशारा किया था इमाम सज्जाद से, जिस वक्त आखिरी रुसत के लिए आए हैं, और उससे पहले भी इमाम बाकर ने इस वाक़े को नाकल किया कि जब रात को इमाम ने अपने अस्हाब से वादा ले लिया, यानी सब वफा का ऐलान हुआ, सबने अपने वफा का जब ऐलान किया, इजहार किया, उसके बाद इमाम ने बताया कि कल क्या होगा, कौन शहीद होगा, कैसे शहीद होगा, मकामात दिखाए, और उसके बाद ये कहा कि देखो हमारी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाए, खुदा मेहदी को ज़रूर मबूस करेगा। और यही जो यही हदीस है, यही मजमून है कि जब आखिरी रुख्सत के लिए आए हैं चौथे इमाम के पास, और वो बहुत संगीन वक्त है कि जिस वक्त इमाम आखिरी वक्त है रुख्सत के लिए, सब शहीद हो चुके हैं, असरार इमामत मुंतकिल कर रहे हैं, जा रहे हैं, और उस वक्त इमाम ये फरमाते हैं कि ला तस्कुनु दमी हत्ता यबसल्लाहु महदी, देखो अब मेरा खून सुकून से नहीं बैठेगा, ला तस्कुन आप इसके अंदर करार नहीं होगा, कब तक करार नहीं होगा, ये कब तक सिलसिला चलेगा, हत्ता या बसल, यहां तक कि अल्लाह मबूस करेगा इमाम वक्त, इमाम समान। और वो बहरहाल बातें मैंने इशारा किया था कि जब इमाम आएंगे तो कैसे तारुफ कराएंगे अपना। देखिए इसी सारी चीजें लिखी हुई हैं मफाती के अंदर, जब हम खोलते हैं रोजे आशूरा के अमाल, जब खोलते हैं और जारत आशूरा जब मफाती के अंदर खोलते हैं शुरू से, ऐसा नहीं है कि आज ये चीज़ें दीन के अंदर डाल दी गई हैं, वो पुराने कदीम तरीन नुस्खे निकाल लें तो उन नुस्खों के अंदर भी ये इबारत मिलेगी। और ये हदीस है कि जब रोजे आशूर जब मोमिनीन एक दूसरे से मिलें तो अहवाल कुर्सी ना करें, एक दूसरे से ना पूछें कि तुम्हारा हाल क्या है, दुनिया के बारे में कोई सवाल ना करें, बल्कि इस तरीके से एक दूसरे को तसल्ली दें कि अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबना बिलहुसैन अलैहिस्सलाम, अज़्ज़मल्लाहु खुदा अजीम करे उजूरना हमारे अज्र को, व उजूरकुम आपके अज्र को, बिमुसाबना कि वो जो मुसीबत हमारे ऊपर आई है। देखिए ये मोहब्बत का आलम और मंजिल ये है कि जब इंसान इस मंजिल तक पहुंचता है तो फिर मैं और तू खत्म हो जाते हैं, फिर फासले मिट जाते हैं। फिर ये नहीं कहा उस मुसीबत की वजह से कि जो इमाम पर आई है, बल्कि क्या वो मुसीबत जो हमारे ऊपर आई है इमाम की वजह से। यानी अब ये मुसीबत ऐसा नहीं है कि मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि ये किसी और की मुसीबत है, नहीं ये मेरी मुसीबत है। कि जब इंसान और जा रहे थे आशूरा के अंदर, बहरहाल आखिर के अंदर भी ये जुमलात हैं कि बे मुसाब है ना, वो जो अजीम मुसीबत हमारे ऊपर आई है इमाम की सबब से, यानी इमाम के ऊपर जो जुल्म हुआ था हकीकत, वो मुसीबत जो हमारे ऊपर इस वजह से आई है, इस जुल्म की वजह से, खुदा इसके बदले में हमारे और आपके अजर को ज्यादा करे। और उसके बाद एक जुमला और भी है, वजअलना वइयाकुम मिनत तालिबीना बिसारही। क्या मतलब है? खाली ये नहीं है ताकि आज खुदा हमारे अजर को ज्यादा करे, और रिवायत के अंदर है कि परवरदिगार आलम हर मुसीबत ज्यादा आदमी को अजर देता है। अगर कुफ्र ना करे, किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो खुदा का कानून ये है कि उस मुसीबत के बदले में उससे कई गुना ज्यादा खुदा का अजर आता है। लेकिन यहाँ पे खाली यहाँ फकत ये बात नहीं है कि बहरहाल मुसीबत आई है हमारे ऊपर, हम गमजदा हैं तो खुदा हमें अजर दे, बल्कि उसके बाद अगला जुमला फौरन ये है कि खुदा मुझे और आपको करार दे, किसमें से, मिनत तालिबीना बिसारे, उन लोगों में से कि जो इस खून के हक को तलब करने वाले हैं, जो इस खून बहा को तलब करने वाले हैं, किसके साथ, मा वली ही उसके साथ के जो इस खून का वारिस है, अल इमाम अल महदी मिन आले मोहम्मद, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। यानी खुदा मुझे और आपको इस खून का वारिस करार दे। तो कुरान के अंदर कानून यह कि अगर कोई मजलूम मारा जाता है तो खुदा उसका जो वली दम है, और ये इस्तिलाह फिक्ह की वली दम, यानी वो जो खून का वारिस है, खुदा उसे ये हक देता है कि वो आए और इस बदले को तलब करे। फौरन करबला का जब भी तस्करा आए, देखो गम मुसीबत अपनी जगह है और वो जरूरी है, उसके बगैर इंसान इस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वहीं तक रुक ना जाओ, जैसे ही इस गम का एहसास करो फौरन ही इस गम के बदले की बात करो, इस खूबहा की बात करो कि बारेला हमने इस खून का बदला लेना है, और किसके साथ लेना है, वो कि जो इस खून का वारिस, खुद ज़ियारत आशूरा, खुद ये जुमलात, ये खुद मुतअद्दिद हदीसें ये बता रही हैं कि ज़हूर का और करबला का बहुत गहरा रिश्ता है। कि अगर ज़हूर के लिए आमादा करना है तो ये जिम्मेदारी आशूर की है। और मैंने तफसील से कई जगह पर अर्ज किया कि अगर कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हाकिमियत कायम होना है कि जो जहूर के जरिए से होगी, तो उसके लिए करबला की जरूरत है। तो जो इंतजाम इमाम ने करबला के अंदर जो इंतजाम किया है, वो जहूर का इंतजाम किया है कि आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर बढ़ता जाएगा और लोग करबला के आईने में हर जुल्म उन्हें करबला की याद दिलाएगा और कहेंगे कि जो गैरत के अल्फाज देंगे कि मौला अगर हम उस वक्त नहीं थे, हमारे जिस्म अगर उस वक्त नहीं थे कि आपके इस इस्तगासे का जवाब देते, आज मैं अपने कल्ब से, अपनी जबान से, अपने हाथ से आपके इस इस्तगासे का जवाब दे रहा हूं। और जब ये इश्क और ये जुल्म से नफरत बढ़ती जाएगी तो दुनिया खुद ब खुद उसे कबूल करने के लिए आमादा हो जाएगी कि जो दुनिया के अंदर आदल को नाफिज करने वाला। इसलिए ये जो मजलिसें हैं, यादादारी जो है, इधर हकीकत आमादगी है, ये पहला कदम है। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं कि अगले कदम पर आएंगे तो उसे छोड़ देंगे, मसला ये कि हमारे यहाँ अल्फाज पकड़ के उसके बाद उससे शुभात ईजाद किए जाते हैं कि कुछ लोग जो हैं ऐसा लगता है कि उनकी सारी अकलें इसी काम के लिए हैं कि कैसे किसी का कोई लफ्ज पकड़ कर उसके जरिए से शुभा ईजाद किया जाए। लेकिन बहरहाल इसका मतलब यह है कि ये वो जगह है कि जहाँ पर आकर हम अपने दिल की तदबीर करते हैं, अपने आप को आमादा करते हैं। और इसीलिए उस्ताद आबिदीनी बहुत बड़ी शख्सियत है ईरान के इस वक्त, आयतुल्ला हैं और अल्लामा तबरतबाई के जो मकतब है फलसफे का और इरफान का उसको आगे लेके बढ़ने वाले हैं। वो कहते हैं कि ये देखना है कि अगर कि मजलिस के अंदर जाना कितना कबूल हुआ, तो ये देखो कि मजलिस उठने के बाद जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा या कम हो गया। और कहते हैं उसकी वजह ये है कि हुसैन ने क्या कहा था कि अला तरौना अन्नल हक ला युअमल बे वअन्नल बातिल ला युतनाहा अनहु, क्या तुम नहीं देखते कि हक से रोका नहीं जा रहा, यानी हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से रोका नहीं जा रहा। فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ لِقَاءَ اللَّهِ, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مومن موت کی آرزو کرنے لگتا ہے, یعنی اتنا ناگوار ہے اس کے لیے اس چیز کو دیکھنا کہ اگر امام سے تعلق برقرار ہوا ہے تو یہ احساس بڑھ جائے گا کہ پھر کہیں اگر حق پر عمل نہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا, کہیں باطل سے روکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, اگر لوگ باطل سے نہیں روکا جا رہا ہوگا تو وہ بھی کچھ اسی طرح سے تڑپے گا کہ جیسے مولا تڑپے تھے, یعنی اسی کی ایک ہلکی سی جھلک اس کی شبیہ ہے خود اس کے وجود میں. سب سے پہلے ساری باتیں برادران عزیز میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, میں اپنے نفس کو سب سے زیادہ اس کا سزاوار جانتا ہوں کہ اسے بار بار یہ نصیحت کی جائے. بہرحال یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اور یہ آیت میرے ذہن میں اس لیے بھی گھوم رہی تھی کہ شب عاشور امام نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے ان میں سے ایک آیت کی جسے بار بار تلاوت کی ہے وہ یہی آیت ہے. اس آیت کے اندر پروردگار فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ خبردار وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے, یہ نہ سمجھے انما نملی لہم خیرن لانفسہم, کہ یہ جو ہم انہیں فرصت دے رہے ہیں یہ ان کے نفسوں کے لیے خیر ہے. اگر آج ان کے پاس اختیار ہے, اگر آج ان کو یہ لگتا ہے کہ جو یہ چاہیں یہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس قدرت ہے, تو یہ گمان بھی نہ کریں. اس کے اندر عربی کے اندر یحسبن تاکید کے ساتھ ہے, نون جو ہے یہ تاکید کے لیے کہ خبردار ہرگز وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, اور اسلام کے اندر یعنی قرآن کی فرہنگ میں کفر کا مطلب ہے وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور جاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے, کہ قرآن نے کافر شیطان کے لیے کہا ہے. ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو نہیں جانتے اور اس کو جھٹلاتے ہیں, ان کے لیے روایات میں قرآن خاص طور پر قرآن کے اندر کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. تک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا گمان بھی نہ کریں کہ یہ جو ہم نے انہیں فرصت دی ہے یہ ان کے لیے خیر ہے, بلکہ پروردگار کہتا ہے کہ انما نملی لہم, دیکھیں انما آتا ہے حسب کے لیے, یعنی صرف کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں گے اللہ صلی اللہ محمد. اس میں بھی جو انما ہے یہ حسر, اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ جو ہے عصمت کے اوپر دلیل ہے, کیونکہ پروردگار عالم طہارت کو سب سے پسند کرتا ہے. لیکن اس آیت کے اندر خدا کہتا ہے خدا کا فیصلہ یہ ہے فقط اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا. اسے پتا یہاں سے علماء کہتے ہیں, میں جانا نہیں چاہتا گفتگو کے اندر, کہ اس کا بہرحال اشارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رجس کے جس میں خدا صرف اہل بیت کو دور رکھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے وہ طہارت کا مرتبہ اہل بیت کو عطا کیا ہے جو کسی کو عطا نہیں کیا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ عمومی بات ہے, نہیں عمومی تو خدا ان اللہ یحب المتطہرین, خدا ہر پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے, خدا ہر کسی سے طہارت چاہتا ہے, لیکن یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں اہل بیت کے علاوہ خدا کسی اور کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا فقط اہل بیت, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ طہارت نہیں جو خدا سب سے مانگ رہا ہے. اور بہرحال تاریخ تب بھری پڑی ہے, جس طریقے سے پیغمبر نے سارے دروازے بند کروائے تھے سوائے مولا کائنات کے دروازے کے, یہاں پر بھی اللہ نے وہی انما استعمال کیا, انما یعنی فقط اس لیے اور کوئی چیز نہیں ہے, صرف اور صرف انما نملی لہم, ہم انہیں فقط اسی لیے مہلت دے رہے ہیں کہ لیزدادوا اثما, تاکہ یہ اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں, اور اس کے لیے وہ لہم عذاب مہین, اور ان کے لیے بہت زیادہ ذلت والا عذاب ہے. یعنی آج اگر ہم نے انہیں فرصت دی ہے. اور یہ کب ہے؟ اس کا جو شان نزول ہے, یہ آیت نازل ہوئی ہے احد کے واقعات, سورہ آل عمران میں جنگ احد کے واقعات کو کافی زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, اور بہت ہی خوبصورت انداز واقعی, یعنی کبھی اگر موضوع ہو تو کس طریقے سے پروردگار عالم نے جنگ احد کے اندر اپنی سنتوں کو جاری کیا ہے, یہ بہت ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, طریقے سے وہ فتح کے نزدیک تھے, اور اس کے بعد کیا ہوا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر خدا نے کس طریقے سے خواب کو بھیجا, سکینہ سکون نازل کیا, بہرحال اسی کے تسلسل میں یہ آیا تھا. اور یہاں پر خدا مومنین سے بات کرنے کے بعد اب کافروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ یہ جو تمہیں مہلت دی ہے, آج جو تم نے مسلمانوں کا جو یہ نقصان کیا ہے, جو تم نے اپنے طور پر انہیں زخم پہنچایا ہے, ضرب لگائی ہے, تو تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے, بلکہ اللہ نے تمہیں یہ فرصت اس لیے دی ہے تاکہ تم اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کرتے چلے جاؤ, اور پھر تمہارے لیے عذاب ہے. اور شب عاشور بھی امام نے جو انتخاب کیا ہے, دیکھیں حسین کے سینے کے اندر تمام قرآن موجود ہے, جب امام سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے, اور امام اگر کسی آیت کا انتخاب کر رہے ہیں, یعنی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں, چاہے نوک نیزہ سے یا شب عاشور, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی آیت جو پہلی چیز ذہن میں آئی یا جو آیت یاد تھی, مطلب مجھے ایسے لوگوں کے لیے چند آیتیں, اگر کبھی کہا جائے قرآن پڑھنے کے لیے تو چند ہی آیتیں ہیں جو ذہن میں ہوتی ہیں, یا اگر حدیث کے لیے کہا جائے تو چند حدیثیں جو یاد ہیں اسی میں سے کوئی انسان ایک سنا دیتا ہے, لیکن جب امام کی بات کی جاتی ہے تو سارا علم حسین کے سینے کے اندر موجود ہے. اگر کسی آیت کی تلاوت کی ہے تو یہ حسین کا حسن انتخاب ہے, تاکہ آج جو یہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے ہمیں گھیر لیا ہے, آج ہم تمہارے نرغے کے اندر ہیں, اور تم اس بات پہ بہت خوش ہو, کیونکہ شب عاشور دشمن خوش ہوا تھا, یہ چیزیں حتیٰ خود مفاتی کے اندر بھی جو شب عاشور ہے اس کے اندر چیزیں لکھی ہیں مختصرا, کہ آج یہ محاصرہ مکمل ہو گیا تھا اور دشمن خوش تھا, اسے یقین تھا کہ اب کوئی مدد نہیں آئے گی. آخری لمحے تک امام جو ہے وہ ہدایت کی کوشش کر رہے ہیں, کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں ایمان کی رمق ہے تو شاید یہ قرآن اس کو بیدار کر دے, کہ دیکھو یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے. اور پھر شہزادی نے بھی دربار کے اندر اسی آیت کی طرف, جب یزید سے جو مکالمہ ہے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے, اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ کیا ہے, اللہ کی سنت, یعنی اللہ کے وہ قوانین کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم اس دنیا کو چلا رہا ہے, جس طریقے سے ہمارے پاس مادی قوانین ہیں, فزکس کا قوانین ہیں, سائنس کے, کیمسٹری کے, بایولوجی کے, یہاں پر سب فیلڈ سے یعنی الحمدللہ افراد موجود ہیں, پڑھے لکھے آپ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو, کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گردش میں ہیں, یہ سارے افلاق, سورج, چاند, ان کی حرکت کیا ہے, گریویٹی کس طریقے سے ہے, یہ ساری چیزیں خدا کا قانون ہے, کہ اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا تو زندگی اس کرۂ ارض کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. اسی طریقے سے خدا کے کچھ اور قانون بھی ہیں کہ جو مادی نہیں ہیں, یعنی مادی فزیکل قوانین نہیں, اور وہ قوانین بھی جو ہیں وہ بہت ہی پریسائز قوانین ہیں, یعنی ذرہ برابر بھی اس کے اندر تخلف نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے قانون کیا ہوتا ہے, قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ آئے گا, گریویٹی جو ہے وہ زمین کے اوپر گریویٹی یہ ہے, جو بھی چیز اچھالی جائے گی پلٹ کے دوبارہ زمین کی طرف آئے گی, یہ قانون ہے, ہمیشہ ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو. اللہ نے جو قوانین دیے ہیں وہ قوانین کے جو غیر مادی ہیں وہ بھی اتنے ہی پریسائز ہیں, جس کے اندر یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم وہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر ذرہ برابر بھی تم خیر کرو گے تو تم اسے دیکھو گے, ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز خدا کی نظروں سے چھپی رہ جائے گی, اسی طریقے سے وہ میامت مثال ذرہ کا شر رہے ہیں، اگر ذرہ برابر بھی شر کیا ہے، اور اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں بہرحال خدا کے خدا کا قانون بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ بعض جگہ پر یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ اگر یعمل، اگر جو ہے وہ کوئی عمل کرتے ہیں کہ یارا تو اس کو دیکھو گے، البتہ توبہ کر لیں تو اس کے آثار مٹ جاتے ہیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اولیاء الہی وہ ہیں کہ بعض دفعہ خدا دل میں کسی برے گمان کو بھی پسند نہیں کرتا، کہ اگر کوئی دل میں خیال بھی ایسا آ جائے تو خدا فوراً فوراً متوجہ کرتا ہے۔ ایک عارف خود انہوں نے نقل کیا، اور ان کی رجب علی خیال کی کتاب میں واقعہ یہ میرے ذہن میں نہیں کہ ان کا ہے یا انہوں نے نقل کیا ہے کسی اور سے، کہ ذہن میں خیال آیا کہ جو غیر مناسب خیال تھا، جب باہر نکلے تو دیکھا کہ اونٹوں کی ایک قطار جا رہی ہے، تو ایک اونٹ نے ان کو مارنے کی کوشش کی، مارا نہیں، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے وہ گھبرائے، گھبرا کے پیچھے ہٹے، اور بعد میں انہوں نے خدا سے کہا، آپ دیکھیں یہ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر کہا کہ یہ جو اولیاء الہی ہیں خدا ان کے نفوس میں ان سے گفتگو کرتا ہے۔ اب اس کی حقیقت بہرحال وہ اہل جانے کہ کیسے ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا بارے الہ یہ میرے دل میں خیال آیا تھا، میں نے انجام تو نہیں دیا تھا، تو خدا نے پلٹ کے کہا کہ اسی وجہ سے تمہیں ماننے کی کوشش کی مگر ضرب تمہیں لگی تو نہیں تھی، پھر جتنا تم نے سوچا تھا، جو خدا کے بہرحال قوانین ہیں اولیاء الہی کے لیے خدا وہاں پسند نہیں کرتا، اور اہل بیت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بہت سخت ہے۔ صفوان تم نے اپنے اونٹ دیے ہیں؟ کہا جی مولا۔ کہا حاکم کو تم نے ہارون رشید کو اپنے اونٹ دیے ہیں؟ کہا مولا دیے مگر میں نے کسی گناہ کے لیے ایک وجہ سے نہیں دیے، وہ حج پہ جا رہا تھا، اس کے حج پہ اس کو ضرورت تھی، اس لیے میں نے جو ہے یہ اپنے اونٹ اس کو کرائے پر دیے ہیں۔ مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے دل کے اندر خواہش ہے کہ وہ اس سفر سے زندہ واپس آئے اور واپس آنے کے بعد تمہاری اجرت ادا کرے؟ یعنی اتنی ہی تم اس کی زندگی پر اس حد تک بھی اگر تم راضی ہو کہ وہ اس حد تک زندہ رہے کہ تمہاری اجرت دے دے تو تم اس کے جرم میں شریک ہو۔ امام کا یہ جو عمل ہے یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے، بہرحال خدا نے اس کے اندر سنت الہی کا تذکرہ کیا۔ خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہدایت کے قابل ہوتے ہیں، ابھی دل سیاہ نہیں ہوتے، پروردگار عالم مختلف مشکلات کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ انہیں واپس پلٹا دے، یعنی خدا ان کے اوپر مشکلات لے کر آتا ہے، پریشانیاں لے کر آتا ہے، کیونکہ پریشانی کے اندر، مشکل کے اندر کسی کو اگر خوشی میں خدا کی یاد نہ آئے، لیکن بہرحال مشکل اور پریشانی میں خدا کی یاد انسان کو ضرور آتی ہے۔ خود قرآن کے اندر خدا فرماتا ہے کہ ما کان اللہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین اور آسمان فساد سے بھر گئے ہیں اس کی وجہ سے کہ جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے خود کمایا ہے، اور خدا یہ کہتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، خدا جو ہے جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے اس میں سے کچھ خدا انہیں لیذیقہم، خدا اس کا ذائقہ چکانا چاہتا ہے، لعلہم یرجعون کہ شاید یہ پلٹ آئیں، رجع پلٹ آنا یرجعون کہ یہ جو مصیبت اور پریشانی ہے شاید اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے یہ لوگ پلٹ آئے۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے تو انسان بہرحال خدا کی طرف، اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے، لیکن وہ لوگ کے جو یہاں سے گزر جاتے ہیں اور اب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ وہ ہدایت کے قابل نہیں رہتے، وہاں پروردگار عالم پھر انہیں چھوٹ دے دیتا ہے، اور پھر خدا وہ ان کو اس طریقے سے، اور یہاں پہ کئی آیتیں ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال کے اوپر، اور اس کے بعد ایک دم سے جب ہم انہیں اس دنیا سے جدا کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور بھی آیتوں کے اندر ہے کہ اس کے بعد ہم ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں زمین و آسمان سے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، انہیں احساس اب خدا کی طرف متوجہ نہ ہو، خدا کو یاد نہ کریں اور جس راستے پر بڑھ رہے ہیں اسی راستے پہ آگے بڑھتے رہیں تاکہ اس کا نتیجہ اس عذاب مہین کی صورت میں ان تک پہنچے۔ اور یہاں پر یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو यहां तक पहुंचाया है उन्होंने खुद अपने आप। ये हर जमाने के जालिम के लिए है, उस जमाने के जालिम के लिए है और आज भी इस दौर के जालिम के लिए भी कुरान की आयत ये है कि खबरदार ये अपने आप को ये ना समझे कि आज अगर ताकत इनके पास है। देखिए तारीख अगर इंसान थोड़ी देर के लिए तारीख पढ़े, बार बार कुरान के अंदर इतनी अंबिया की तारीख नकल की गई, उलमा की बार बार ताकीद है, खुद मौलाए कायनात की ताकीद है कि तारीख पढ़ी जाए, वो इसीलिए है कि अपनी इस मुख्तसर से ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारी चीज़ों के अंजाम नज़र नहीं आते। लेकिन जब इंसान तारीख देखता है तो उसको पता चलता है कि कैसे कैसे लोग थे। तो खुद कुरान कहता है कि ये पहाड़ों को काट के घर बनाते थे, ऐसे आलीशान घर बनाते थे, जो इनको चीज़ें हमने अता की थी किसी और को अता नहीं की थी। ये जो बादशाह थे, जो ये शहनशाह थे, तारीख के अंदर ये लोग के जिनका एक उबूहत थी, दबदबा था, रोब था, आज कहाँ है तारीख के अंदर। परवरदिगार आलम का कानून यह है कि जो भी जुल्म के रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है तो अपने खुदा उसे फुर्सत देता है। इसमें जो ज़्यादा मुश्किल है, और बस मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू के दूसरे मरहले में कि जो मुख्तसर है उसकी तरफ आ जाऊँ, कि यहाँ पर मुश्किल ये है कि बाज़ दफ़ा मोमिनीन वो भी इस चीज़ को जब देखते हैं तो नहीं समझ पाते। यानी मोमिनीन के जिनके निगाहों का मयार कुरान होना चाहिए, हम अपने लिए अर्ज़ करें कि हम लोग के जो पुरानी उसूलों से हमें चाहिए कि चीज़ों को देखें, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम भी जब ये देखते हैं कि कुदरत आज इस वक्त दुनिया के अंदर कहाँ है, ताकत कहाँ है, जब दायरी तौर पर ये नज़र आता है तो हम ये समझने लगते हैं कि परवरदिगार आलम ने सारी ताकत उन्हें दे दी है। बाद दफ़ा नाऊज़ु बिल्लाह तसव्वुर ये है कि खुदा, ज़बान से चाहे ना कहें लेकिन तसव्वुर ये होता है कि खुदा ने दुनिया बनाकर छोड़ दी है, अब जो जो दिल चाहे करता रहे। और उसके बाद जब तहलील करते हैं, यानी जब एनालिसिस करते हैं, तो इस एनालिसिस के अंदर इस उसूल का ख्याल नहीं रख पाते, बल्कि वो बातें बाद दफ़ा करते हैं कि जो खुद हमारे लिए और दूसरों के लिए मायूसी का सबब बनती है। यानी ये बात इल्का करते हैं कि आज जो सूरत हाल है ये कभी तब्दील नहीं हो सकती, आज जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कभी बदला नहीं जा सकता। इन इलाही उसूलों से अगर देखें तो दुनिया एक और तरीके से नजर आती है। जब इन इलाही उसूलों से नज़र आए तो पूरे यकीन के साथ जो है हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं रहबर मुअज़्ज़म के इसराइल 25 साल नहीं देखेगा। ये क्या चीज़ है? ये वही इलाही उसूल है जो मौला ने कहा था कि कुफ्र के साथ हुकूमत चल सकती है मगर जुल्म के साथ नहीं चल सकती। जब इलाही निगाह से देखा जाता है तो आपको उस वक्त के जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि दुनिया के अंदर से दीन जो है गॉड इज डेड, खुदा मर चुका है, दीन खत्म हो चुका है। आप जानते हैं इंकलाब इस्लामी से पहले सब यही बात कहते थे कि अब दीन जो है वो दीन की फातिहा पढ़ी जा चुकी है, अब खुदा ये सारी पुरानी बातें हो चुकी हैं। उस वक्त पूरे यकीन के साथ जो उलमाए हक थे, शेख मुतहरी की किताबें उस जमाने की इंकलाब से पहले की मौजूद हैं कि जिसके अंदर पूरे यकीन से उन्होंने ये कहा है कि आने वाला दौर जो है वो दीन और खुदा का दौर होगा। ये क्या है? देखिए इल्मे गैब वो एक अलग चीज है, ये इल्मे गैब नहीं है, ये अल्लाह के वो उसूल हैं कि जो ये जानता है कि फितरत अल्लाह लती फतरन नास अलैहा, खुदा ने फितरत इलाही पर लोगों को पैदा किया है। तो अब सारी दुनिया जो भी कहती रहे, जो इस हकीकत को जानता है वो पूरे यकीन से कहेगा कि इंसानियत कब तक फितरत से भागेगी, कब तक अगेंस्ट द करंट जाएगी। एक वक्त आएगा कि पलटेंगे लोग, क्योंकि उसके बाद ये एहसास होने लगेगा। और आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, खुद इस वक्त जो इसराइल के खिलाफ जो अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर हो रहा है, ये मटेरियलिज्म की मौत है, ये कैपिटलिज्म की मौत है। वो जो सारे फलसफे इस बुनियाद पर खड़े हुए थे कि मादा है दर हकीकत, मादी फायदा है जो मोटिवेट करता है लोगों को, लोग जो है वो मादी फायदे के लिए काम करते हैं, आज वो इन लोगों को देखें, ये जो तालिबे इल्म हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कि जो अपने करियर, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ जो है, सबसे बढ़ के तो करियर ही है वहाँ पर, उस वक्त अपने तमाम इन मादी चीज़ों को दांव पर लगाकर खड़े हुए हैं, इन्हें किस चीज़ ने इस बात के लिए आमादा किया है। वो जो कहते थे कि इंसान फकत मादे से, मटीरियल से मोटिवेट होता है, मादी फ़ायदा उसको लेकर आता है मैदान में, वो इंसान को नहीं जानते, वो इंसान को जो समझते हैं, वो जो इंसान की तहलील एनालिसिस जो इंसान का है वो नाकिस है। वो इंसान को उस नजर से नहीं देखते जो इंसान की हकीकत है। इसलिए रेबर ने कहा कि ये बार 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 कैलकुलेशन करते हैं और हर दफा गलती करते हैं उसमें, क्योंकि ये इंसान को गलत समझते हैं। और इसीलिए कहा कि जो इनके सोशल साइंसेज हैं, बहरहाल बहुत संगीन ताबीर है, पॉइजनस है, जहरीली है ये सोशल साइंसेज। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जिस बुनियाद के ऊपर लिखी गई है वो बुनियाद गलत है। इसके अंदर इंसान को उस नुमाइंदे खुदा के उनवान से नहीं देखा गया है। इसके अंदर इंसान को नफक तो फी है मिन रूही इस अनुमान से नहीं देखा गया है। इसलिए वो कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर गलती करते हैं और उसका नतीजा आपके सामने है कि इनकलाब ईरान के बाद से मुसलसल शिकस्त से दोचार है। बरादरान अज़ीज़, इसके बाद बस गुफ्तगू को मैं समेटूँ कि देखें दूसरी जो आयत है इसके अंदर परवरदिगार आलम ने इसकी तरफ इशारा किया कि मोमिनीन से कि देखो ये जो सुन्नत इब्तिला है ये तुम्हारे अंदर भी जारी है। मा कान अल्लाह लियज़र अल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैहि, खुदा मोमिनीन को इस तरीके से नहीं छोड़ेगा। हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन तय्यब, यहाँ तक कि खबीस और तय्यब जो है वो अलग अलग हो जाए। यानी जो मुश्किलात हैं ये परेशानियाँ आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता, इससे फरार नहीं है। और यही खुदा का कानून है, यही खुदा का तरीका है कि जिसके जरिए से खुदा जो है पाक को तैयब तैयब उनको और खबीस को अलग अलग करता है। यहीं से लोग पहचाने जाते हैं, यहीं से सफ़ें दुरुस्त होती हैं। ताकि खुदा इस तरह से छोड़ेगा ना ये सारी मुसीबतें परेशानियां जो हमने मोहलत दी है उनके लिए, बहरहाल वो उनके लिए शर है, लेकिन दूसरी तरफ से मोमिनीन के लिए क्या है कि यहाँ से ये मोमिनीन के लिए खुलूस तक पहुँचने का रास्ता है, तो उनके खलूस उनका सदाकत यहीं पे इसी मैदान के जरिए से सामने आई। और कहा कि देखो ये खुदा के पास इल्म है, खुदा जानता है, इल्म गैब में खुदा की चीज़ें हैं, लेकिन खुदा हर किसी को उस पर मुतले नहीं करना चाहता, बल्कि खुदा इसी जरिए से चाहता है कि अमल के जरिए से लोग अलग अलग। और उसके बाद क्या हुआ, इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अजीम, कि अगर तुम ईमान लेकर आओ और तत्तकू और तक्वाए इलाही इख्तियार करो, कि दोनों चीज़ें देखे शर्त हैं ईमान और अमल साले, तो तुम्हारे लिए लकुम अजरुन अजीम, तो तुम्हारे लिए अजीम अजर। बस ये इम्तिहान तो रहेगा, ये इम्तिहान तो ख़त्म नहीं होगा। और यहीं से जो है अगर ये इम्तिहान ना हो तो बहरहाल वो जो हुनर है, वो जो खुदा का जो कहता है कि जो मोमिन का बातिन है, खुदा कहता है मोमिन का बातिन उसके जाहिर से ज़्यादा खूबसूरत है। इसी मैदान के अंदर जो है वो जो जाहिर आश्कार होता है कि अंदर क्या है, और खुदा इसको आश्कार करता है। इस तकवे के हवाले से कि अगर तुम तकवा इख्तियार करो, तो यहाँ पर रहबर ने ये कहा कि एक तकवा जो है वो फर्दी तकवा है और एक जो है वो इज्तिमाई तकवा है। इज्तिमाई तकवा क्या है? बाज़ लोग ये समझते हैं कि इज्तिमाई तकवा ये है कि वो शख्स के जो माशरे के अंदर किसी मकाम के अंदर है वो मुत्तकी हो। यानी अगर साहिब मकाम है, किसी ओहदे के ऊपर है, किसी भी हवाले से, चाहे वो कोई जो है मसलन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या मसलन हुकूमत के अंदर हो, किसी भी वजह से माशरे के अंदर अगर उसके पास कोई मकाम है तो वो बहुत तकवा हो। तो आगे फरमाते हैं कि ये जो है ये भी फर्दी तकवा है, अगरचे मकाम अमल जो है वो मुख्तलिफ है, वो इज्तिमा है, लेकिन ये फ़र्द का तकवा, ये इज्तिमाई तकवा नहीं है। ये एक सियासी फ़र्द का तकवा है मसलन, ये एक इज्तिमाई फ़र्द का तकवा है कि वो फ़र्द के जो माशरे के अंदर है, माशरे के अंदर काम करता है, मगर उसके बावजूद क्या है, उसके बावजूद मुत्तकी है। फरमाते हैं कि नहीं, इज्तिमाई तकवा नहीं है, इज्तिमाई तकवा यह है कि माशरे में उन अहदाफ को अमली करने की कोशिश की जाए कि जो अहले बैत ने दिए हैं, यह है इज्तिमाई तकवा। फर्दी तकवा यानी जिंदगी में झूठ ना बोले इंसान, झूठ ना बोले मिसाल के तौर पर, गीबत ना करे, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इज्तिमाई तकवा क्या है कि वो जो अहले बैत ने उसूल दिए हैं उन्हें माशरे पर हाकिम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर जुल्म का मुकाबला है, जिसके अंदर अदल और इंसाफ की बात है, जिसके अंदर मोमिनीन के साथ मुसावात है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी है, इशार है, इसको माशरे की सतह पर कायम करना, यह है इज्तिमाई तकवा। और यह चीज़ यहाँ पे देखें, चूंकि सब अपने बैठे हैं तो इसीलिए कुछ बातें यहाँ पर हो सकती हैं जो और जगहों पर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब वो लोग बैठे हैं कि जो बाशऊर हैं, जो समझते भी हैं, और खाली बाशऊर नहीं है बल्कि बाअमल भी हैं। देखिए कुछ चीज़ों के शॉर्टकट नहीं हो सकते। बहुत सारे शुबहात फैलाए जाते हैं और फैलाए जाते रहेंगे, क्योंकि परवरदिगार आलम में उनको भी बहरहाल जो फुर्सत दी भी है, कुछ लोगों वहाँ पे भी बहरहाल खुदा ने फुर्सत दी है, तो वो शुबहात तो फैलाते रहेंगे और उसके जवाब भी दिए जाने चाहिए और दिए जा रहे हैं, और जवाब हैं, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है, ये जवाब ज़रूर दिए जाने चाहिए, लेकिन ये शुबहात कहाँ से आते हैं, किस माशरे में ये शुबहात पनपते हैं, किस तरह के लोग इन्हें कबूल करते हैं। जब माशरे के अंदर शऊर की सतह गिर जाती है, माशरे के अंदर जहल होता है, माशरे के अंदर फ़ख्र होता है, जब इस तरीके की चीज़ें माशरे के अंदर होती हैं, तो उस माशरे के अंदर खुद ब खुद ये ज़मीना यानी ये ग्राउंड होता है कि शुबहात वहाँ पर परवान चढ़ सकें। तो शॉर्टकट नहीं है, ये सही है इसका जवाब दिए जाए, लेकिन हकीकत हकीकी इसका जवाब यह है कि उमूमी तौर पर माशरे को उस सतह तक पहुँचाया जाए कि जहाँ पर इस तरह के शुबहात को माशरा कबूल ही ना करे। सैयद मुतहरी ने बहुत इसके ऊपर गुफ्तगू की है, उनकी जो किताब बाद में सुहन के उनवान से छपी, 4 से 5 तकरीर की हैं अदालत के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने शुरू पहली तकरीर में इमाम का वो जो इमाम के लिए जो मशहूर जुमला है कि उतला फी महराब ही लिशिद्दत अदले, कि अली को महराब में अली की अदालत की वजह से कत्ल किया गया लिशिद्दत अदले, उसमें उन्होंने 4-5 तकरीरों में बताया कि अगर माशरे के अंदर अदालत नहीं होगी, वो किताब तर्जुमा शुदा मौजूद है, तो उसका असर जो है वो अकायद के ऊपर क्या होगा, अकायद पर, अकीदे पर, लोगों के खुदा के बारे में जो अकीदा है उसके ऊपर क्या असर होगा, अखलाक के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ेगा, इज्तमाही अखलाक के ऊपर, बाकायदा उन्होंने ये चीज़ों को बयान किया है। तो ये काफ़ी नहीं है कि ये कह जवाब दे देना इस तरीके से, ये ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन माशरे को उस तरीके से ढालें कि जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो उसूल दिए, जब ऐसा होगा तो जब शऊर की मंजिल जब बढ़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि जब खुद मौला फरमाते हैं कि जब फ़ख्र आता है तो ईमान चला जाता है, जब अदालत में जब इंसाफ नहीं होता तो लोग खुदा की अदालत के बारे में मशकूक होने लगते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें हैं, जब तक हम और आप मिलकर, और इसके लिए कोई राह फरार नहीं है, ये एक तवील जद्दोजहद है कि जैसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझसे बेहतर आमादा हैं, लेकिन इसके लिए हमें आमादा होना पड़ेगा इस काम में, और उसी के ज़रिए से जो हकीकी जो चीज़ है कि देखें, जब शऊर की मंजिल खाली पढ़ने से शऊर नहीं आता है, यानी अगर बहरहाल अगर किसी को बुरा लगे तो आमादा चाहता, फ़कत डिग्री से शऊर नहीं आता। खुद रैबर ने इस वाक़े को नकल किया और बहुत ही खूबसूरत नकल किया कि जब इनकलाब का ज़माना था, तो इनकलाब के ज़माने में कुछ लोगों ने एक एतराज़ ये करना शुरू किया कि देखें, जब इमाम खुमैनी का नाम आता है तो ये 3 दफ़ा सलवात पढ़ते हैं, और जब पैगंबर का नाम आता है तो 1 दफ़ा सलवात पढ़ते हैं, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखें, ये आप जो आजकल जो अल्फाज इस्तेमाल कर लें कि भाई उनके नाम पर 3 दफ़ा सलवात पढ़ रहे हैं, तो खुद आगा ने कहा कि एक टैक्सी ड्राइवर कि जो रानंदी टैक्सी वहाँ पे था कि उसने इसका जवाब दिया, ने कहा कि उसका मतलब यह है कि इस वक्त इमाम खुमैनी का नाम और उस पर सलवात पढ़ना जुल्म से मुकाबले की दलील है, वो ताहूत का मुकाबला है, इसीलिए उस नाम के ऊपर 3 दफ़ा सलवात पढ़ते हैं, क्योंकि वो सलवात नहीं है, वो ताहूत से बरात का ऐलान है। और उसके बाद आप देखें कि उसके बाद ये रस्म ख़त्म हो गई, अब इस वक्त ईरान के अंदर ये रस्म नहीं है। तो शऊर जो है वो फ़कत डिग्री उससे नहीं आता, शऊर जो है बहरहाल अलबत्ता वो भी उसके लिए एक रास्ता है, ज़रूरत है कि शऊर को बढ़ाया जाए। तो ये काम चूँकि ये अपनी जगह थी, यहाँ पे ये बात कही जा सकती थी कि हमें शॉर्टकट तलाश नहीं करने चाहिए कि एक मसलन वीडियो बन जाएगी, एक चीज़ ये हो जाएगी, एक चीज़ ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, मैं इसकी इफादियत का मुनकर नहीं हूँ, होना चाहिए, और सबको मतलब मैं अपने आप को भी इसके लिए समझता हूँ कि हमें इसमें आगे आना चाहिए, मैं इसका मुनकर नहीं हूँ, लेकिन जो इसके असली हल हैं हमें उसकी तरफ भी मुतवज्जे रहना चाहिए और मुसलसल उस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी बस एक आखिरी एक आज जुमला और फिर मसाइब की तरफ आ जाऊं, देखिए बस उलमा ने इस तरीके से बयान किया कि अगर इंसान इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है और हक के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी पहली मंजिल यह है कि इंसान इस यकीन तक पहुंचे कि खुदा के अलावा कोई उसे इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी सबसे पहले जो है वो साइल बने, सवाल करे खुदा की बात का और ये यकीन रखे कि हिदायत वहीं से आती है। दुआए अरफा के अंदर इमाम ने इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में इस तरीके से कहा कि परवरदिगार انت الذي اشرقت الانوار في قلوب الاولياء حتى عرفوا بار الہ یہ تو ہے کہ جس نے اپنے نور کی تجلیاں اپنے دوستوں کے دلوں کے اوپر برسائیں حتى عرفوا یہاں تک کہ وہ تجھے جاننے لگے انہیں تیرا عرفان پیدا ہوا ووحدوك اور انہوں نے تجھے وحدانیت کے ساتھ پہچانا یہ ان کا کمال نہیں تھا وہ خود آگے نہیں بڑھے تھے یہ تیرے نور کا کمال تھا یہ تیرے نور کی تجلی تھی کہ جسے تو نے ان کے دل کے اوپر نازل کیا حتی عرفو کہ تجھے بات انہوں نے تجھے پہچانا وبحدو اور تجھے واحد جانا وانت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک اور بار الہ تو تھا کہ جس نے اپنے اولیاء اپنے محبوب ان کے دلوں سے دوسروں کو دور کر دیا اغیار جو تیرے غیر ہیں بار الہ تو نے ان کے دلوں سے اپنے اغیار کو دور کیا حتی لم یحبوا سواک یہاں تک کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ انہوں نے تیرے علاوہ پھر کسی اور کو نہیں چاہا لم یحبوا سواک حتی یہاں تک کہ بار الہ تو نے دلوں سے باقی ہر چیز کی محبت کو نکال دیا اور انہیں اپنی محبت میں خالص کر لیا ولم یلجاؤ الی غیرک اور اس کے بعد انہوں نے نہ کسی سے محبت کی اور نہ تیرے علاوہ کسی کی پناہ طلب کی وانت المونس لهم احیث او حشدهم العوالم اور بارے رہا جب عوالم نے انہیں وحشت میں ڈالا تو فقط تو تھا جو ان کا مونس تھا وانت الذی ہدیتهم بارے لہ تو نے ان کی ہدایت کری ہے سو استبانت لهم المعالم کہ جب یہ نشانیاں ان کے لیے آشکار ہوئیں تو بارے لہ تو انہیں ہاتھ پکڑ کے یہاں تک لے کر آیا ہے کہ یہ سوال خدا کی بارگاہ میں کر کہ 11 سالہ شہید کا یہ بہت مشہور اس کے چند جملے بہت مشہور ہوئے کہ جب آپ کو جان معلوم ہے کہ دفاع مقدس میں 11 سال کی عمر کے بچوں کو آنے نہیں دیتے تھے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم جنگ میں کیسے آئے تو اس نے کہا التماس کے ذریعے التماس اسے پوچھا تم اتنے چھوٹے سے ہو یہ جو گولا ہے یہ اتنا بھاری ہے اسے اٹھاتے کیسے ہو نے کہا التماس کے ذریعے آخر میں اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ پتا ہے کہ لوگ شہید کیسے ہوتے ہیں نے کہا التماس کے ذریعے یعنی اس یقین تک پہنچ جانا کہ جو کچھ بھی خیر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اسی کی طرف سے نازل ہے اگر ہم اس راستے کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلا ہنر یہ ہے کہ گدائی سیکھیں مانگنا سیکھیں اہل بیت سے مانگنا سیکھیں اور یہ دیکھیے اہل بیت اور اہل کا جو مقام ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ یہاں پر مولا نے کیا کہا کہ یہاں پر مولا نے کہا کہ پروردگار یہ تو ہے کہ جس کے نور کی جب تجلی تیرے اولیاء کے دل پر ہوئی تو وہ تیری طرف کھینچے ہوئے چلے آئے اور زیارت کے اندر امام کے لیے معصوم زبان سے خدا نے کہلوایا کہ حسین جو یہ تیرے پاس آ رہے ہیں بے ضیاء نور کا اہتدت طالبون علیک یہ وہ ہیں کہ جو تیرا نور جن کو تھام کر اپنی طرف بلا رہا ہے کتنا عبث یعنی کتنا غلط یہ خیال ہے کہ اگر تصور یہ ہے کہ ہم خود آ گئے ہیں بے نور حسین یہ آپ کا نور ہے کہ جس نے ان کی ہدایت کی ہے آپ نے انہیں بلایا ہے اس لیے ہمیشہ امام کی بارگاہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے بولا میں اس کرم کا لائق نہیں تھا لیکن آپ بہت کریم ہیں آپ نے مجھے محروم نہیں کیا آپ نے مجھے بھی اپنے اوپر کے لیا کرنے والوں کی صف میں شامل کر دیا बहुत करीम है यह जो है, ये किसी को अपने दर से मायूस नहीं लौटाते। कोई भी आ जाए, शर्त यह है कि अगर सच्चे दिल से हुसैन के दरवाजे पर आ जाए तो हुसैन उसे खाली माफ नहीं करते बल्कि अपने आप तक मिला लेते। अगर हुर ने रास्ता ना रोका होता और हुर ने अगर मजबूर ना किया होता तो इस जगह पर हुसैनी खेमे न लगते। और खुद हुर ने इस बात का एतराफ किया कि मौला मेरी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद मौला ने क्या किया? जब हुर पलट कर आए तो मौला ने याद नहीं दिलाया कि हुर तुमने हमारा रास्ता रोका था। एक दफा ने कहा कि हुर देखो, हमने चूके तुम्हारे लश्कर को पानी पिला दिया था, हमारे लश्कर में पानी खत्म हो गया। बल्कि मौला ने क्या कहा, जाओ जाकर इस्तकबाल करो, हमारा मेहमान आ रहा। और जब हुर ने जाने की इजाजत तलब की तो तब भी मेरे मौला ने यही कहा कि हुर तुम तो हमारे मेहमान हो, हुर अभी तो हमारे मेहमान बने हो, थोड़ी देर तो हमारे पास ठहरो। लेकिन बाद उलमा ने कहा कि हुर को जल्दी ये भी थी कि हुर जब अलतश की सदाएं सुनते थे ना तो हुर का सर शर्म से झुक जाता। हुर को एक खौफ ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस घराने का कोई बच्चा आ जाए और हुर के चेहरे को देखकर कहे कि यही वो शख्स था कि। और फिर कैसा इमाम ने इनाम दिया हुर, यहीं तक हुसैन का दिल है ना, हुसैन का दिल यहाँ पर राजी नहीं हुआ। हुर के लिए कहा था सकलत का उम्मो, हुर तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे। और हुर ने पलट कर क्या कहा था कि मौला अगर आपकी माँ कोई और होती तो मैं भी शायद को जवाब देता, मगर मैं क्या करूँ, आपकी माँ फातिमा जहरा है। हुसैन का दिल राजी नहीं हुआ, जहरा का जो रुमाल था करबला में हुसैन ने फकत हुर है कि जिनके सर के ऊपर वो रुमाल बांधा है। अजब करीम है। थोड़ी देर के लिए अगर सोचें कि वो हुसैन के जिसे सबसे इतनी मोहब्बत है उसे अपनों से कितनी मोहब्बत होगी, उसे अली अकबर से कितनी मोहब्बत होगी, उसे अब्बास से कितनी मोहब्बत होगी, और सबसे बढ़कर उसे अपनी बहन ज़ैनब से कितनी मोहब्बत होगी। रिवायत में के असरार हैं हुसैन और ज़ैनब के दरमियान, शरीकतुल हुसैन है। एक जुमला मैंने कई दफा कहा और बाद में एक और चीज की तरफ मुतवज्जे हुआ कि मौला अब्बास के लिए बार बार कहा जाता है कि मौला अब्बास जो है ये इमाम के सामने खामोश खड़े रहे हैं, इमाम के सामने कभी बोला नहीं, ना कोई मशवरा दिया, ना हत्ता रोजे आशूर गिरिया किया। लेकिन किसी ने मुतवज्जे करवाया कि एक मंजर और भी है, कि एक और भी वक्त है कि जहाँ कोई और भी है कि जो इसी तरीके से खामोश है। क्या वो वक्त ये है कि जिस वक्त हसनैन को पता चला है कि अम्मा दुनिया से चली गई है, अली ने बुलाया है, हसन भी आए हैं, हुसैन भी आए हैं, अपने आप को अम्मा के ऊपर गिराया है, तारीख ने अजीब जुमले नकल किए हैं, हसन के जुमला नकल किया है, अम्मा कुछ तो बोले इससे पहले कि मेरी रूह इस दुनिया से चली जाए, मेरी रूह इस जिस्म से चली जाए। हुसैन का जुमला नकल हुआ है, अम्मा कुछ तो बोले ये आपका हुसैन है, अम्मा गरीब हुसैन आया है, अम्मा कुछ वो बोले लेकिन वहीं पर एक ही साल के सिर का तो फर्क है, ज़ैनब भी खड़ी हुई है लेकिन तारीख ने कोई जुमला नहीं लिखा कि ज़ैनब ने भी कुछ बोला हो।
ये क्या है, ये वही वसीयत है जो अम्मा करके गई है, अरे ज़ैनब मैं जा रही हूँ, अब मेरा हुसैन तुम्हारे हवाले है। यही वजह है कि अजीब एहतराम है, अजीब अंदाज है कि जिस तरीके से पैगंबर एहतराम करते हैं ज़हरा का, इसी तरीके से हुसैन एहतराम करते हैं। हर जगह ये दोनों भाई बहन साथ साथ है, जब मदीने से निकल रहे हैं साथ है, मक्के से निकल रहे हैं साथ है, हर मकाम पर ये दोनों साथ साथ है। मगर एक वक्त वो आया जब हुसैन ने आकर कहा, ज़ैनब अब हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर। बहन अब हमारी भी बारी है, अब हमें जाना है। खुदा जाने ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी। ज़ैनब को तसल्ली दी कि देखो बाबा मुझसे बेहतर थे, भाई हसन थे। ज़ैनब तुमने तो बहुत मुसीबतें देखी है, अरे ज़ैनब ये पहली मुसीबत तो नहीं है, अब हमें भी जाने दो। शायद ज़ैनब ने कहा हो भैया सब गए थे, मगर ज़ैनब के दिल को ये आस थी क्या हुसैन हुसैन रुखसत हुए, हुसैन सबसे रुखसत हुए और उसके बाद बच्चों से रुखसत हुए। अजीब रुखसत है ज़ैनब को उसके बाद इमाम ने सालार किया, अल्लाह जाने क्या क्या कहा हो। देखो ज़ैनब जब बाजार में जाला तो क्या करना, जब दरबार में जाला तो क्या करना। ज़ैनब इमाम कोई और है लेकिन शरीकतुल हुसैन तुम हो, अब हमारे मिशन को तुमने आगे बढ़ाना है। लेकिन जब आगे बढ़े बाज मकातिल ने लिखा, ज़ैनब ने सजा दी महलन महला यबन ज़हरा, ऐ ज़हरा के बेटे आहिस्ता। बस आखिरी जुमले एक रुख्सत ये है, और उसके बाद जब इस लाशों से गुजरे हैं ज़ैनब का रंग फ़ख़ हुआ, लेकिन जब बीमार भतीजे की तरफ देखा तो अपना गम भूल गई। बेटे के पास आई, कहा मेरे बेटे सैयद सज्जाद मेरे लाल गम ना करो। देखे अजीब अंदाज है, अभी कुछ दिनों बाद हमारे मज़ार बनेंगे, दुनिया भर से हमारे चाहने वाले आएंगे, यहाँ हमारे शियों का मजवा रहा करेगा। अजब अंदाज से ज़ैनब ने तसल्ली दी सैयद सज्जाद की खातिर, ज़ैनब अपना गम भूल गई। मगर जब कूफा और शाम के बाद ज़ैनब लौटी है, अब जब इस फतह के बाद ज़ैनब लौटी है, अब जब ज़ैनब ने वो जिम्मेदारी अदा कर दी, अब मकातिल ने लिखा कि ज़ैनब ने ऊंट से उतरी नहीं है, ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से गिराया है और घुटनियों के बल चल के भैया, अरे ज़ैनब आ गए।